नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए एक बड़ा सौभाग्य है।
भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ्य है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें जगजोड़ने वाला काम है और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा। हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहा है। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि कुल 66 सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे सदन में सभी लोग आधी रात तक वंदे मातरम पर चर्चा के लिए एक साथ आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदन में इस तरह की रचनात्मक चर्चाएं होती रहेंगी। संसद ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे पारित किया, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में पान मसाला और केंद्र सरकार से अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है। उपकर से प्राप्त राशि का उपयोग जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि हालिया हवाई संकट के लिए इंडिगो पूरी तरह से जिम्मेदार है और वो अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रही है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में श्री नायडू ने कहा कि हालिया उड़ानों के रद्द होने और देरी के लिए इंडिगो का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार पर किसी तरह का दबाव नहीं है और सरकार सभी एयरलाइंस के साथ समान व्यवहार करती है। इस बीच इंडिगो एयरलाइन ने नागर विमानन महानिदेशालय के कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। इंडिगो ने इसे बेहद असुविधाजनक बताते हुए ग्राहकों को हुई असुविधा और कठिनाई के लिए खेद व्यक्त किया। महानिदेशालय इस जवाब की जांच कर रहा है और उचित न होने पर कार्रवाई करेगा। भारत ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई मजबूत करने के लिए भारत विरोधी उग्रवादी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटेन सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। इससे अवैध धन के लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत श्रीलंका को आईएनएस घड़ियाल जहाज से 700 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री त्रिंकोमाली भेजी। इस खेप के पहुंचने के साथ राहत सहायता की कुल मात्रा अब 1058 मीट्रिक टन हो गई है। भारत और यूरोपीय संघ ईयू ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए बातचीत में प्रगति की समीक्षा की और वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मुद्दों को सुलझाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईयू के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मोरोस सेफकोविच के साथ बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। भारत और चिली ने नई दिल्ली में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए के लिए बातचीत का चौथा दौर पूरा कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत और चिली के प्रतिनिधि मंडलों के बीच गहन और रचनात्मक बातचीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वार्ता के अंतर्गत अध्यायों में पर्याप्त प्रगति हुई है। फुटबॉल क्लब गोवा ने एआईएफएफ सुपर कप चैंपियन का खिताब जीत लिया है। गोवा ने कल गोवा के मडगांव स्थित फतोरदा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ईस्ट बंगाल एएफसी को पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार ये खिताब जीता। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबलों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।